अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भरे कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 25 रबीउल सानी 1443 हिजरी यकम दिसंबर 2021 आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ, नाम है मेरा आदिल।
जागो जागो,
द सनराइज शो विद आदिल अजहर।
प्रोग्राम सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है आज एक दिन के ब्रेक के बाद। बहुत माजरत मेरी तरफ से, आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड यू गाइस ऑन मंडे बिकॉज मेरी जो ट्यूसडे मॉर्निंग की कमिटमेंट थी वो that had been there. I knew about it. लेकिन मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना भूल गया था, तो बहुत आखिरी टाइम पे मैंने आप लोगों को अपडेट किया, उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। एंड आई होप आप में से कुछ लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा, है ना। एंड आई मिस यू गाइस एज वेल, बिकॉज सुबह का रूटीन अपना मिस हो जाए ना, एक तो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन, बातें, इतनी सारी चीजें दिल में थी यार। आज ये इंसान सोच के रखता है ना, मैं ये बात करूंगा, ये बात करूंगा, एंड सडनली you've got no one to talk to, and then you really feel ke not good man, it's not the normal start of the morning. So here we are, rozana ki tarah bahut sari baatein hamare paas hongi karne ko, chahe baat ho duniya ke mukhtalif ilakon ke hawale se, wahan se aane wali badi khabron ke hawale se, khelon ka zikr ho, ya phir economics baba uska bhi zikr hona hai. Kafi zyada economics ke number kal bhi aaye aur aaj bhi aayenge, kyunki zahir hai today is the 1st of December. और ट्रेड का नंबर जो है वो हमारे पास बहरहाल आज आ जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन का नंबर कल आ गया है उस पर हम जरा बात करेंगे। और आज स्टॉक मार्केट के हवाले से लिए भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट दिन है, किस लिहाज से वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो बहरहाल प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर तरीकाकार वही, जाना पहचाना और पुराना, आपको ट्वीट करना पड़ेगा, ऑलराइट, ट्विटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अपने ट्वीट के साथ हैशटैग यूज करना पड़ेगा सनराइज विद आदिल, ऑलराइट। So I'll catch you in like 30 seconds. Let me log into my own Twitter account, okay? All right, so here we are and good morning. Good morning, jin logon ne program abhi tune in kiya hai. Okay. Oh my God. Something very, very bad has happened at the Lucky One Mall. Oh my God, I've just tuned in and I see, oh my, yalla khair, okay, Allah behtar kare, people have been sharing the videos, don't do that yaar, alright, chalein, Lucky One Mall, yeah, here in Karachi, Allah sabko apne khair wa afiyat mein rakhe, chalein ji, aage badhte hain, aur humare paas aap logon ke messages aaye hue hain, unko let me scroll down and see, aaj ka pehla message humare paas kin ka aaya hai, कौन है जी, नजम साहब ने आज का पहला मैसेज हमें भेजा है, सो दैट इज वेरी नाइस। वैसे मोहम्मद आसिम साहब का भी मैसेज आया हुआ और कहते हैं, माय एल्डर सन रमीज अली टर्न 16 ऑन 30th नवंबर, प्लीज विश हिम हैप्पी बर्थडे, ही लिसंस एंड लाइक्स योर प्रोग्राम वेरी मच, मिस यू ऑन हिज बर्थडे। ऑलराइट रमीज, हैप्पी बर्थडे टू यू यंग मैन, स्वीट 16 इट इज, सो कूल, जबरदस्त है। एंड देन आई होप यू हैड अ गुड टाइम, वीकेंड पे बर्थडे थी तो अच्छी तरह सेलिब्रेट भी किया होगा, वैसे भी 16th बर्थडे की क्या बात होती है ना। ऑलराइट, नजम साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, सर्दी आ गई है क्या कराची में? अच्छा, आपने डॉक्टर समरीना हाशमी का एक ट्वीट जो है वो साथ में अटैच भी किया हुआ है, पहली बार आज शाम को कराची में सर्दी की खुशबू आई है, सोंदी सोंदी रेत की खुशबू और मूंगफली की खुशबू को अगर मिला दिया जाए तो वो सर्दी की खुशबू बन जाती है। अच्छा चलें, ठीक है, फाइन, व्हाटएवर शी विश टू से वो कर दें। सर्दी ये वाली हो गई है कि पंखे, हाँ जरूर हल्के हो गए हैं, पंखे अभी तक चल रहे हैं, और बल्कि कराची में तो हाँ वो भी वाला सीन होता है ना, जब लोग स्वेटर भी पहन कर आए हुए होते हैं तो फिर भी वाला सीन होता है स्वेटर वाला ना, कि यार लगता है ऑफिस में आज एसी तेज हो गया जो आज लोग स्वेटर पहन कर आए हैं। वैसे मेरे ऑफिस में 3-4 लोग स्वेटर पहन कर आ रहे हैं और मैं उनसे एक एक से पूछ रहा हूँ, यार खैर तो है, लेकिन आई मीन अभी भी मॉर्निंग में इट फेल्ट लाइक 17 degrees Celsius, सो देयर वाज अ जेंटल लैंड ब्रीज दैट वाज ब्लोइंग, ड्राई लैंड ब्रीज, तो के या थोड़ी बहुत सर्दियों वाला सीन होता है, लेकिन नहीं, आई थिंक नॉट येट सर। नजम साहब, इतने से मामूली सा सवाल का मैंने तफसीली जवाब दे दिया, लेकिन इस वीकेंड पे ये ख्याल किया जा रहा है कि कराची में जो है वो 15 और 14 डिग्री सेल्सियस जो है वो टच हो सकता है अलग सुबह और डे का हाई जो हो सकता है वो 27 and 28, सो वी कैन से दैट परहैप्स नेक्स्ट वीक. या फहीम अली खान कहते हैं, डियर दीदी अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द रेगुलर लिसनर. ब्रो एज पर शाजीब खान ज़ादा एंड कामरान खान आर इकोनॉमिक कंडीशन इज वर्स्ट एंड सून वील बी गोइंग टू डिफॉल्ट. प्लीज टेल अस द ट्रू पिक्चर ऑफ आर इकोनॉमी. यार फहीम अली खान, मैं भाई, मेरे फहीम भाई, मेरे ख्याल से मैं इकोनॉमी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करता हूँ और मैं आपको एक इसका एक पर्सपेक्टिव भी देने की कोशिश करता हूँ. पाकिस्तान का ये कह देना दैट द डिफॉल्ट इज इमिनेंट, ऐसा हरगिज. अब देखें, अब शाजीब खान ज़्यादा ने अपने प्रोग्राम में जो है, मैं देख रहा था कल, मैंने उस पर एक तंजिया ट्वीट भी किया था और शाजीब खान ज़्यादा ने अपने प्रोग्राम में शहबाज राणा को बिठाया हुआ था और खुर्रम हुसैन को बिठाया हुआ था. हमें पता है कि इन दोनों की गुफ्तगू जो है वो इकोनॉमी के हवाले से कैसे होती है. जहाँ तक कामरान खान का ताल्लुक है, कामरान खान साहब के जज्बात और एहसास जो है, मुझे ऐसा लगता है कराची स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के साथ ऑसिलेट कर रहे होते हैं. सो इसलिए मैं उनके ऑनेस्टली स्पीकिंग इकोनॉमिक के तज्जियों को अब इतने ज़्यादा सीरियस मैं लेता नहीं हूँ. शाजीब खान ज़्यादा की ज़ाहिर रिसर्च टीम बहुत अच्छी है, जो उनको टेली प्रॉम्प्टर पे चीज़ें ज़ाहिर रिले कर रही होती हैं. शाजीब की मेरे ख्याल से अपनी भी अंडरस्टैंडिंग हम इन चीज़ों की बेहतर हो गई होगी, लेकिन अपनी नॉलेज को आप ग्लास फुल दिखाएं या ग्लास हाफ दिखाएं, ये तो फिर आपकी मर्जी बनती है. इकोनॉमिक चैलेंजेस आर देयर फहीम, जिसे कहते हैं ना एविएशन की जबान में हेडविंड्स हैं. ज़ाहिर हेडविंड्स हैं और सबसे बड़ी हेडविंड जो है ज़ाहिर है वो आपकी इस वक्त इंटरनेशनल कमोडिटी की प्राइसेस जो बढ़ी हुई हैं. बिकॉज इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस आपको पास है, वो क्राइसिस सिचुएशन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ चैलेंजिंग सिचुएशन ज़रूर है. दैट इज़ अबाउट योर इम्पोर्ट्स. आपकी इम्पोर्ट्स, आपका जो ट्रेड डेफिसिट है, वो आपके लिए इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है, जिसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ज़ाहिर ये है कि आप जो चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ऑयल हो गया, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो गई, उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं. और उसकी कीमतें बढ़ी हुई होने की वजह से जो है वो पाकिस्तान को तजारती खसारा के सामना है. लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दो तीन बातें समझने की है मेरे भाई, कि क्या इंटरनेशनल कीमतें नीचे आ सकती हैं. अगर इंटरनेशनल कीमतें नीचे आएंगी, जैसा कि हमने पिछले 3-4 दिन में तेल के हवाले से देखा है, कल एक बार फिर से तेल की कीमतों में जो है वो अच्छी कमी देखने में आई है. और कल जो तेल 70 के ऊपर आया हुआ था, कल एक बार फिर से अगर मैं WTI की बात करूँ, जो अमेरिकन मार्केट में ट्रेड होने वाला ऑयल है, तो वो एक बार फिर से 67 और 68 और 66 पे जो है वो ट्रेड कर रहा था, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, राइट. और दूसरी बात आती है कि जी उसके साथ साथ और दीगर कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो है वो भी हमने नीचे देखी है. नेचुरल गैस की प्राइस हमने नीचे देखी है, अगर मैं गलती पर ना हूँ तो सीमेंट की कीमतों में, माफ कीजिएगा, कोल की कीमतों में, कोल की कीमतों का बड़ा इंपैक्ट होता है. आपको पता है पाकिस्तान में सीमेंट की शेयर प्राइसेस के ऊपर कोल की कीमतों में कमी आई है. जो पाकिस्तान की आप बड़ी बड़ी इम्पोर्ट्स देखें, तो उसमें पाकिस्तान का भला हुआ है. मेरे ख्याल से जो इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर पाकिस्तान के लिए है, जो कि आज नंबर रिलीज होगा, हमारी एक्सपोर्ट्स ने कैसे परफॉर्म किया है, हमारी जो बरामदाद है उनकी कारकर्दगी कैसी रही है, क्या बरामदाद का वो मोमेंटम पिछले महीने में भी जारी रहा है जो कि पिछले कुछ अरसे से चलता हुआ आ रहा है. तो चैलेंजेस ज़रूर हैं, और ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं है जो ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे और ममालिक हैं. लेकिन ज़ाहिर है हमें पता है कि शाजीब का एक जनरल उनका एक रुझान है, एक इंक्लिनेशन है, जिस तरह कामी भाई की एक सर्टन इंक्लिनेशन है रिपोर्ट करने के हवाले से. सो मैं कल देख रहा था इत्तेफाक से, कल मैंने शाजीब का प्रोग्राम लगाया और कल राणा शमीम वाला जो मैं ये कहूँगा कि कॉमेडी शो हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो जिस तरह ये पूरा मामला और इसके जितने किरदार अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं इस वक्त, वो कहते हैं ना कि बीच चौराहे में वो हांडी फूट रही है. तो शाजीब का जितना सॉफ्ट इंटरव्यू चल रहा था एहसन इकबाल साहब के साथ, और जिस तरह एहसन इकबाल साहब उस नैरेटिव को रन कर रहे थे जहां पर राणा शमीम पे बात आती थी, तो वो बार बार मियां साहब को मिलने वाली सजाओं की बात करना शुरू कर देते थे. सो उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि देखिए अब वही बात है कि मैं किस तरह इस सिचुएशन को प्रेजेंट करूंगा. सो चैलेंजेस आर देयर, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान इज गोइंग टू डिफॉल्ट, मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम उस सिचुएशन या उस सिनेरियो पे आए हैं. बल्कि अगर आप मुझसे ईमानदारी की बात करें तो हम उस सिनेरियो से काफी दूर हैं. सो या इट्स प्योरली अबाउट ये डिस्क्रिशन फहीम भाई, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये आपके ऊपर है कि आप इस सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहते हैं या पेसिमिस्टिक होना चाहते हैं, ग्लास आपको आधा भरा हुआ नजर आ रहा है या आधा खाली नजर आ रहा है. ठीक है, इट्स प्योरली अ मैटर ऑफ योर पर्सपेक्टिव. ओके, ये चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil. Good morning, जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. ब्रेक पर जाने से पहले हम फहीम साहब की सवाल का जवाब दे रहे थे मईशत के हवाले से. इवन दो इट वॉजन अ प्लान डिस्कशन दैट आई हैड, मेरा प्लान था कि मैं जल्दी से आप लोग के ट्वीट्स जो है वो शामिल करूंगा. इकोनॉमी पे आगे चल के जरा कुछ नंबर्स के ऊपर हम बात भी अभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो सिचुएशन है वो ये. अच्छा जी, एक और जो ट्वीट जाहिर है बड़ा पॉपुलर हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, वो ये हो रहा है कि इंडिया के ओरिजिन के एक नए हजरत हैं जो कि ट्विटर के अब सीईओ बन गए हैं, पराग अग्रवाल. एक रिलेटिवली अननोन गाय अंटिल वेरी रिसेंटली, बट नाउ जैक डॉर्सी ने अनाउंस किया कि जी वो ट्विटर जो है वो छोड़ के जा रहे हैं. पिछले काफी अरसे से जो है वो जैक डॉर्सी के पीछे शेयर होल्डर जो ट्विटर के बड़े खास तौर से शेयर होल्डर्स थे वो चाह रहे थे कि जैक जो है वो अब खैरबाद कहे ट्विटर को. और उसकी रीजन ये भी थी कि जैक की अटेंशन जो थी वो डिवाइडेड थी, बिकॉज रिमेंबर ये जैक डॉर्सी जो है स्क्वायर नामी एक फाइनेंशियल पेमेंट की एक सर्विस है जिसको उसके भी सीईओ हैं. वो तो एक वक्त दो कश्तियों में वो सवार थे. जैक डॉर्सी ऑफ कोर्स फाउंडेड ट्विटर इन 2006 और दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है, नॉट एज बिग, इनफैक्ट नो वेयर इवन क्लोज टू बीइंग एज बिग एज फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप फॉर दैट मैटर. लेकिन फिर भी एक मखसूस मार्केट, एक मखसूस तबके के लिए जो है ये बहुत ही पॉपुलर, बल्कि उनके दिन रात का ओढ़ना बिछोना जो है ये ट्विटर है. और एक बार ट्विटर का चस्का आपको लग जाए तो फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मजा भी नहीं आता. सो बहरहाल अब सीन ये हुआ है कि जी पराग अग्रवाल जो कि CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे गूगल ट्विटर के, वो यहाँ पर आ गए हैं. और जाहिर है उस पर फिर एक लिस्ट जो हर वक्त शेयर हो रही होती है कि दुनिया की चंद बड़ी कंपनियां जो हैं वो उसके CEOs जो हैं वो इंडियन ओरिजिन हैं. पराग अग्रवाल हो गए, सुंदर पिचाई, सत्या नादेला, IBM के CEO अरविंद कृष्णा हैं, एडोबे एंड विमियो एंड गूगल क्लाउड चलें ओके, एंड देन नेट ऐप पैलो एल्टो नेटवर्क्स. ये कल ट्वीट किया हुआ है जनाब उमर सैफ साहब ने और कहते हैं कि जी सम रियलिटी चेक. अच्छा मुझे देखिए इसमें मैं कल देख रहा था जितने भी हम ट्विटर ग्रुप्स में होंगे कल कहीं ना कहीं ये डिस्कशन ज़रूर आया था कि यार व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, कि ये सारे के सारे जो हैं ये इंडियंस इन पोजीशंस पे जो हैं वो क्यों आ रहे हैं. देखिए आपको एक बात, ये कोई 3-4 साल का या कोई 8 साल या 9 साल का फिनोमिनन नहीं है. इसके लिए आपको समझना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को इंडिया ने अपनी एक नीश बनाया था. इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने इस बात को रियलाइज किया था और उन्होंने इस बात को समझा था कि जी ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट जरूरी है. अभी भी अगर आप लेकिन इंडियन ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो इट इज नॉट एट दैट लेवल वेयर चाइना इज और वेयर इवन सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या नॉर्थ कोरिया, बिकॉज देर आर नो न्यू टेक्नोलॉजीज विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया. दीज आर इंडियंस हु एमिग्रेट टू अमेरिका और वहां पे जाके दे एक्सेल. वाई दे एक्सेल, मे बी दे आर हार्ड वर्किंग, वन और टू थिंग, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इंडिया इवन इन देयर 50s and 60s दे डेवलप दीज इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड IITs. इनमें जितने भी ज़्यादा बड़े नाम आपको नजर आ रहे होंगे एक दो के अलावा, ये ज़्यादातर इंडिया IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इंडिया के कोने कोने में. बट आई मीन नॉट कोने कोने, मतलब ये नहीं कोई 3,000 IITs हैं, नहीं इतने नहीं हैं, लेकिन ये बहुत पहले, आई थिंक अगर मैं गलती पढ़ना हूँ तो शायद जवाहरलाल नेहरू ने अपने ज़माने में IITs जो हैं ये बनाए थे. इसके अलावा मैनेजमेंट के हवाले से इंडिया में IIM बड़े मशहूर हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो हैं ये बड़े मशहूर हैं. यहाँ पे दाखिल होना बड़ा मुश्किल होता है, दे मेंटेन अ क्वालिटी एंड अ स्टैंडर्ड. एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इसमें अप्लाई करते हैं और एक वेरी स्मॉल नंबर दैट एक्चुअली मैनेजेस टू गेट एडमिशन इनटू दीज इंस्टीट्यूट्स. सो वो एक इनमें से जितने ये काफ़ी बड़े लोग जो हैं ये IITs से निकले हुए हैं, ये तो एक फैक्ट है. लेकिन मैं आज सुबह जो है BBC के एक प्रोग्राम में ज्योति मल्होत्रा जो कि इंडियन एक मशहूर जर्नलिस्ट है, मशहूर बस ठीक है, हाँ मिटियर की जर्नलिस्ट है, एक ऑनलाइन वेब पोर्टल के साथ वो वाबस्ता हैं द प्रिंट नामी, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रही थी. यानी इंडिया में एक अलग लेवल की बहस चल रही है. वो ये बता रही हैं दैट ऑल ऑफ दीज बिग टॉप इंडियन ओरिजिन CEOs जो हैं दे आर ऑल अपर कास्ट हिंदू. ये सारे के सारे अपर कास्ट हिंदू हैं जो कि एक बार फिर से इंडिया में जो कास्ट बेस्ड टेक्नोलॉजिकल डिवाइड है उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं. दैट वाज अ पर्सपेक्टिव आई वाजंट रियली एक्सपेक्टिंग टू हियर, बट यस वेरी इंटरेस्टिंग दिस डिबेट इज. लेकिन बहरहाल जी, फॉर 1.3 बिलियन पीपल, दी 7 or 8 पीपल हु आर मेकिंग इट बिग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, याद रहे जी, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, and these guys are making it big. I think इनके लिए this is और ये वो head start है जो टेक्नोलॉजी में इंडिया ने लिया था. यानी सीरियसली स्पीकिंग 90s was the time when जिस वक्त आपको पता है कि एक डॉट कॉम बूम आया था और फिर उसके बाद उस वक्त आपको टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट की जरूरत थी. आउटसोर्सिंग टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी तेजी से ऊपर आनी शुरू हुई थी. आपको चीपर सॉल्यूशंस चाहिए थे एंड ऑल. 90s में जब हम पाकिस्तान में पता नहीं किन चक्करों में पड़े हुए थे और बड़े बड़े हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाने में लगे हुए थे एंड ऑल, उस वक्त इंडिया वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ दीज आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल. दीज वर वेरी फंडामेंटल लेवल इशूज जिसे आप बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं, बीपीओ कहते हैं, कॉल सेंटर्स एंड ऑल, बेसिक लेवल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड ऑल. एंड देन रिमेंबर Y2K बग, रिमेंबर Y2K. आई थिंक दैट वॉज द ट्रिगर मोमेंट फॉर दीज इंडियन पीपल और एक बड़ी तादाद में इंडियन प्रोग्रामर्स जो है, बिकॉज यू वॉन्टेड पीपल टू कम देयर इन बल्क. आपको बहुत बड़ी तादाद में प्रोग्रामर्स चाहिए थे हु कुड गो टू अमेरिका. उस जमाने में इतना ज्यादा ऑफ साइट वर्किंग वाला रुझान नहीं था कि जी मैं अपना काम आउटसोर्स कर दूं और इस प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट वाला काम मैं यहाँ से कराऊं. नहीं, आप अपनी बेसिक सर्विसेज आउटसोर्स कर रहे थे, लाइक कॉल सेंटर मैंने आपको बताया, लाइक डेटा एंट्री वाली कहानियां, ये सारी आ जाया करती थी. लेकिन आपको जब प्रोग्रामर्स वगैरह और डेवलपर्स चाहिए होते थे, उस जमाने में बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस जो हैं दे माइग्रेटेड टू अमेरिका. और वो जनरेशन जो है वो जाहिर है अब आपको नजर आ रही है. सो हम उस रेस में अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे थे कि अगर इंडिया ने 12 या 10 बड़े CEOs प्रोड्यूस कर दिए, तो इंडिया इज 7-8 टाइम्स बिगर अ कंट्री देन अस. मे बी मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं अगर एक या डेढ़ पाकिस्तानी होता तो फिर हम कहते यार चलो हम बराबर बराबर की बात कर रहे हैं ना, बिकॉज हम प्रोपोर्शनल उसकी भी बात करते हैं. लेकिन क्या जो पाकिस्तानियों का प्रोफाइल है, जो पाकिस्तानी इज द वर्क दैट दे आर सीकिंग इन अमेरिका, अगेन आई रिपीट ये जिन बड़े नामों की हम बात कर रहे हैं, दीज आर द पीपल हु हैव मेड इट बिग इन अमेरिका. हैड दीज पीपल स्टेड इन इंडिया वुड दे हैव बिकम दैट बिग? नो, दीज आर इंडियन ओरिजिन पीपल. उनकी असल जो उनकी अमेरिका इज एन अमेजिंग कंट्री सीरियसली. इस लिहाज से आई एम अ बिग फैन. मैं शायद अगर 2 साल पहले अमेरिका में अपना पूरा एक महीना गुजार किया, और उससे पहले भी मैं जब 2011 में अमेरिका गया था अपने होशो हवास में पहली बार, I was really impressed by that country. और उस कंट्री की जो एक बहुत खास बात है वो ये है, इट्स the opportunities that America provide. मैं आपको अपने मिसाल देता हूँ अपने मोहल्ले के. मैं ज़ाहिर नाम नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, एंड आई एम श्योर द फैमिली इज़ नॉट इवन लिस्टिंग टू माई प्रोग्राम नाउ. माई वेरी गुड फ्रेंड फ्रॉम माई मोहल्ला, इन फैक्ट ऑल हिज सिबलिंग्स, दे वर नॉट गुड इन देयर स्टडीज. वो अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, और मैंने एक दो दफ़ा उनकी रिपोर्ट कार्ड देखी थी और मैं भी उनके पे परेशान हो जाया करता था कि यार व्हाट आर दे गोइंग टू डू इन देयर करियर्स. द एंटायर फैमिली इमिग्रेटेड टू USA. नाउ वन ऑफ द सिबलिंग्स, इन फैक्ट टू सिबलिंग्स, वन ऑफ द सिबलिंग्स इज अ डॉक्टर, वन गाय हु इज वू थॉट इज गुड फॉर नथिंग, इज वर्किंग फॉर Salesforce, अमेरिका की बहुत बड़ी टेक फर्म है आपको पता है. And there's another guy who's my friend, is based, he's as a software, he's a computer engineer, big time, and he's working in some big country down in Houston and all. And what was the difference? Mera ye khayal hai ki agar ye Pakistan mein reh jate, these guys would have struggled. They would have struggled for their entire life. Or maybe for that matter, in a peer country like this. But when they moved to America, America ne jo unko opportunities di, and that is the thing. America gives you the opportunity, the onus is upon you guys. मेरा जाती तौर से ये ख्याल है, मेरा जाती तौर से ख्याल है कि जो फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानी वहाँ पे जाके बसे हैं ना, वो तो लग गए इन्हीं तरह के कामों में. होटल चला लो, टैक्सी चला लो, फलाना काम कर लो, रेस्टोरेंट चला लो. जो सेकंड जनरेशन आ रही है ना, दीज गाइज आर स्मार्ट, दे आर एंडिंग अप इन गुड कंपनीज. एंड डोंट बी सरप्राइज इफ इन द नेक्स्ट 10 or 15 years यू एक्चुअली सी वन पाकिस्तानी, अमेरिकन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन मेकिंग इट बिग. अमेरिका हैड अ हेड स्टार्ट कंपेयर टू अस. They still have a better computer and IT infrastructure compared to us. हम startup अपने circles में 250 million आने पर बहुत खुश हो रहे हैं. इंडिया में शायद मेरे ख्याल से 2.5-3 अरब डॉलर या उससे भी ज़्यादा startup के scene में जो है वो वेंचर कैपिटल जो है वो पैसा लेकर आ रहे हैं. उस हमसे 10-20 times ज़्यादा पैसा वहाँ पर आ रहा है. ये तो सोचने वाली बात है ना कि what were we doing? हम कर क्या रहे थे यार? What were we doing in 80s and 90s? हम किन चक्करों में पड़े हुए थे यार? सोचने वाली बात है ना. फिर जो पिछली डेकेड आपकी पूरी गुजरी है उसमें हमने क्या किया है? व्हाट हैव वी डन? जब दुनिया भर में स्टार्टअप का सीन वाज बूमिंग, वेयर डिड वी पाकिस्तानी गो रॉन्ग कि हम जो है वो उस राइड में या उस वेव में नहीं आ पाए? तो ये ट्वीट्स कर देना बड़ा आसान है, ये सारे कर देना. आई थिंक इनके अंदर जो रीजन है वो खोजना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो ये एक बड़ा तवील डिस्कशन है, इस पर ज़ाहिर एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है. लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट टू थिंग्स. अभी अपने कुछ लिसनर्स के साथ लंच पे भी था और किसी ने मुझसे ये बात पूछी कि आपने बच्चों के बारे में क्या, वुड यू वांट देम टू ग्रो इन पाकिस्तान? एंड आई सेड यस, आई वांट देम टू ग्रो इन पाकिस्तान, बिकॉज स्पेशली इफ यू आर इन टेक, this is the best time to be in Pakistan, guys. This is the best time. The sort of money, the liquidity that is finally coming in. Alhamdulillah, people have started noticing Pakistan. Aur Pakistani talent, jo zabardast talent hai, wo ab logon ki nazaron mein aana shuru ho gaya hai. Aur wo jo bachche the, jo ke aaj se 20 saal, 25 saal aur 30 saal pehle America mein paida hue the, jinke ابو ریسٹورنٹ چلا رہے تھے اور جن کے ابو ٹیکسی چلا رہے تھے اور جن کے ابو جو ہیں وہاں پہ وہ ایک موٹیل چلا رہے تھے, یہ بچے اب یونیورسٹیز میں جا کے جب یہ ورک فورس کا حصہ بنے, یو ول سی مور پاکستانی نیمز کمنگ اپ. آئی مین دا ریسنٹ ایگزامپل دیٹ وی ہیو از دا سی گلوبل سی او آف کے ایف سی صابر سمی. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دس فیکٹ دیٹ ہی از فرام آر یونیورسٹی اینڈ ان شاء اللہ یو نیور نو ہی مائٹ بیکم دا سی او آف دا یم ریسٹورنٹ دا انٹائر دا پیرنٹ کمپنی آف یو نیور نو بیکاز ہی از اے پریٹی کول گائے. وین ہی واز دا سی او آف ریکٹ جنرل مینیجر آف ریکٹ بینکیزر ان پاکستان, آئی میٹ ہم ایٹ آئی بی اینڈ آئی واز تھرلی امپریسڈ. ہی واز کوائٹ ینگ دین, آئی تھنک ان ارلی 30s اور ہم اپنے ارلی 20s میں تھے. اینڈ ہی واز دا سارٹ آف دا گائے دیٹ وی وانٹیڈ ٹو بی لائک. اینی وے آئی ول جسٹ گو آن اینڈ آن. سو گائز, it's very easy again to be pessimistic about this thing, but I'm very very optimistic about the future of people in tech working in Pakistan, one, and secondly these Pakistani Americans making it big in the next 10-15 years. It has to happen, I'm telling you right now. All right, le chalte hain aapko break ki jaane, milenge aapse break ke baad. Wapas aake aaj ke akhbarat mein shamil aam khabron par nazar dalte hain. So don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome back guys, ek baar phir se aapko khushamdeed kehte hain and good morning in doston program tune in kiya. Acha bhai, kafi sare aap logon ka jo hai na feedback aaya hua hai on the discussion that we had just right now on the tech and the Indian tech and Pakistan tech and stuff. So yeah, mujhe mauka milega to main aap logon ke messages wahan se bhi shamil karunga. Kuch ek do cheeze mention karta chalu main. Ishal Varsi ka message aaya, Ishal ki birthday thi, main show nahi kar paya. To Ishal, happy birthday to you my friend and I hope you were doing fine and you had a good time. Iske alawa Bilal Yusuf kehte hain, my family is your regular listener, today is our daughter's 5th birthday, please wish Zimal a very happy birthday on behalf of brother Taha, they both are listening to you right now on the way to school, Bilal Yusuf and Qudsiya Asif. Well, ye taqriban koi 15 minute pehle ka bheja hua message, I don't know whether Talha and Zimal are listening to my show, abhi bhi sun rahe ho. Lekin, lekin, happy birthday to you, Zimal. Hope you have a good day and year ahead. Okay. Then Mustafa and Hassan listening to my show while heading towards their school. Thank you. Umair Khokar ka message aaya hai. Dil uncle, Waleed bin Umair going to school. That is great. And then we have got Amar Hussain. Mera show inko nostalgia deta hai. One of my friends during the school days was Adil Azhar. He is in Australia now, but that was way back in 1995, matriculation batch, Delhi school. Achha, I was 1996, not Delhi school. But unka naam bhi Adil Azhar tha. Amar Hussain ye kehte hain. Theek hai ji. Motorway aaj bhi band hai. Ye bataya hame Ali Dar sahab ne. Yaar, thodi jaldi is baar fog nahi aa gayi hai Lahore mein. Wo December ke end mein aati thi. Okay, Shahzad Tasneem kehte hain, how much total deficit our economy can bear? Please comment on the Saudi deal. Yaar, dekhiye, total deficit hamara economy bear kar sakti hai. It depends on how much of the total deficit hum finance kar sakte hain. Ye dekhiye na, is ye 2+2=4 wala discussion nahi hai ye. Main agar apna deficit badha bhi deta hu, but farz kare ki main apni koi source of income ko improve kar deta hu, source of inflow ko improve kar deta hu, main koi remittances mein chhakka maar deta hu, मैं एक्सपोर्ट्स में कोई छक्का मार देता हूं, तो आई कैन फाइनेंस अ बिगर डेफिसिट. ओके, समझ रहे ना मेरी आप बात? या मैं कोई फाइनेंसिंग का सोर्स सिक्योर कर लेता हूं, आई बिकम बिग इन इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट एंड ऑल, जिससे मैं अपने डेफिसिट को फाइनेंस कर सकता हूं. तो ये सवाल इतना आसान है नहीं कि मैं एक्स अमाउंट जो है वो बेयर कर सकता हूं. सो चले आगे बढ़ते हैं जी, आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. एंड देन क्या कहते हैं जी डॉन का, सुप्रीम कोर्ट टर्म्स कमर्शियल यूज ऑफ मिलिट्री लैंड एज शेमफुल, रिजेक्ट्स रिपोर्ट फर्निश्ड बाय डिफेंस सेक्रेटरी, सेज लैंड अक्वायर्ड फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस मस्ट बी सरेंडर टू स्टेट इन केस ऑफ कमर्शियल यूज, जॉइंट कमेटी ऑफ 3 सर्विसेज सेट अप टू आइडेंटिफाई वायलेशन इन ऑर्डर टू सबमिट अ फ्रेश रिपोर्ट. वेरी इंटरेस्टिंग, कराची में खासतौर से मिलिट्री लैंड जो है कमर्शियल पर्पस के लिए जो इस्तेमाल हो रही है. अच्छा, इसमें उन्होंने दो एग्जैक्ट जगहें जो है ना काला पुल की तरफ आइडेंटिफाई की है. उन्होंने कहा जी इसको गिराएं जल्दी, आज ही गिराएं इसको. तो मुझे बताएं, कंफर्म करें वहां से कोई गुजर रहा है, अगर काला पुल से कोई गोरा कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा है तो जरा बताएं कि वो तोड़ दिया उन्होंने जिस तरह नस्ला तोड़ा था. लेकिन आगे बढ़ते हैं. जंग की आज की लीड क्या है, विफाकी काबीना इलेक्शन कमीशन के फंड्स ईवीएम के इस्तेमाल से मशरूत. वाओ, लाहौर इलेक्शन में वोट खरीदने की वायरल वीडियो और सिंध में महंगाई बढ़ने पर इजहार तशवीश, ठीक है। कोरोना पैकेज पर ऑडिट रिपोर्ट पर वजाहत तलब, घी और चाय की पत्ती के अलावा पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोशी कीमतें खत्ते में सबसे कम। यार ये खत्ते में सबसे कम वाली चीज रहने देना यार। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। वजीर आला सिंध अपने मामला दुरुस्त करें, ये कहना है वफाकी वजीर इत्तलात का। सबसे महंगा आटा पाकिस्तान में हैदराबाद में मिलता है, अवाम फौरी वैक्सीनेशन करवाएं, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी जो बात की है ईवीएम के हवाले से, इसके हवाले से ना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत बिल्कुल दे आर लुकिंग एट ऑपोजिट डायरेक्शन। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहना है, ईवीएम खरीदारी गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं, हुकूमती दबाव मुस्तरद, दायरा कार में रहते हुए आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की मुकम्मल सलाहियत है, टेंडर संजीदा तरीन नौयत का मामला, मरूब नहीं होंगे। अच्छा जी ठीक है। तीन कमेटियां बना चुके, चार हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की पाबंद, सिफारिशात और कंसल्टेंट हायर करके टेंडर समेत दीगर उमूर आगे बढ़ाएंगे, जराए का ये कहना है। ठीक हो गया जी आगे बढ़ते हैं। और क्या खबर है, 10 माह में 18.87 मिलियन मोबाइल फोन पाकिस्तान में बनाए, ये कहना है मुशीर तजारत। कल उन्होंने ट्वीट भी किया अब्दुल रजाक दाऊद साहब ने, और उसमें उन्होंने बताया है कि नंबर्स प्रेजेंट किए हैं कि पाकिस्तान में जो मोबाइल फोन असेंबलिंग की मार्केट है, नॉट मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड जरा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन हम अभी बहुत ही बेसिक लेवल की असेंबलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, बिकॉज मुझे नहीं पता कितनी बड़ी वेंडर इंडस्ट्री मोबाइल की ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है। ये एक स्लो प्रोसेस होता है, आसान है तनकीद करना, ये तो सिर्फ असेंबली हो रही है मैन्युफैक्चरिंग नहीं, आप पहले असेंबली करते हैं, यू क्रिएट अ मार्केट फॉर पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड फोन, एंड देन इसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं, आप वो शुरू करते हैं। तो ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि हमारे कुछ बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन भी कहना चाहिए कि यार हमारा बिजनेसमैन भी ना इतना प्रोग्रेसिव नहीं है, बहुत कम है असल में ना, डरपोक से बिजनेसमैन है यार सीरियसली। सो कोई प्रोग्रेसिव बिजनेसमैन जो है वो देखेगा अपॉर्चुनिटी, और कुछ पुर्जे जो है जो इस वक्त हम चाइना से या ताइवान से इंपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगा। लेट्स सी इसमें कितनी, इसे कहते हैं ना डिलीशन कहते हैं इसको, कितनी डिलीशन जो है या इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो हो रही है। ऑलराइट, इसके अलावा और क्या खबर है, एक्सप्रेस की आज की लीड भाई बिलावल भुट्टो से जो है वो बड़े इम्प्रेस लग रहे हैं। उन्होंने तकरीर किया, पेशावर में कल जलसा किया, साजिश करें या टेप निकालें, अवामी ताकत से हुकूमत बनाएंगे, बिलावल भुट्टो का ये कहना है। कहते हैं ईवीएम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट और कुलभूषण को एनआरओ की कानून साजी चैलेंज करेंगे। वाओ, इमरान खान इतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकें, आज लोगों का जमे गफीर देख लें। वैसे पेशावर में अच्छा रीजनेबल जलसा किया है पीपल्स पार्टी ने कल, एटलीस्ट जो तस्वीरें आई हैं। और यार एक जमाने मुझे याद है NA1 यार पेशावर, यार पीपल्स पार्टी का रोब हुआ करता था, वो जीतते थे वहां से सीटें यार, ये शेरबाज सब वहीं से ही आए ना, पीपल्स पार्टी की हैं, और इफ्तिखार गिलानी हुआ करते थे, कौन हुआ करते, पेशावर से सीटें निकालती थी पीपल्स पार्टी एक जमाने में, यूज्ड टू बी बिग देयर, बट अब तो पता नहीं बुरा हाल है। लेकिन कल अच्छा जलसा कर दिया इन लोगों ने। टॉप मेडिकल बॉडी कैंसिल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सर्विसेज फर्म्स, ओके ठीक हो गया जी। एंड देन नवंबर इन्फ्लेशन हिट्स 11.5 हाईएस्ट इन 20 मंथ्स, इस पे बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। इन्फ्लेशन का नंबर पाकिस्तान में आया है और वो अच्छा नंबर नहीं आया, वो काफी हाई नंबर आया है। सो अभी ले चलते हैं, और वो एक्सपेक्टेड था जाहिर है, एंड फॉर द ऑब्वियस रीजन जिस पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रोग्राम अभी ट्यून किया, दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस। ऑनेस्टली मैसेजेस प्रोग्राम में बिल्कुल शामिल होंगे अभी थोड़ी सी देर में। और यस, आप अगर ट्वीट करना चाहते हैं, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, दैट्स वन वर्ड। और इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @adeel_azhar पर, दैट्स AEL_AZHA। Alright, खेलों के हवाले से बात करें, क्रिकेट से, let us start. And yep, there wasn't much issues for Pakistan. Yes, we lost 2 wickets in chasing that total. But फिर भी पाकिस्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन मदोजज इस मैच में देखने में आए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद पाकिस्तान ने जो है वो eventually यस, द विकेट वॉज टर्निंग, इट वॉज स्पिनिंग, लेकिन याद रहे कि ये जो स्टेडियम चिटाग्रॉम का है, चौधरी जहूर स्टेडियम, यहाँ पे इस साल के शुरू में आपको पता है कि वेस्ट इंडीज ने भी एक बड़ा शोरा आफाक चेस किया था, 450 रन वो चेस करने में कामयाब हुए थे। और इसका मतलब ये है कि चौथी इनिंग्स में यहाँ पे, यस आई थिंक कल मैं टीवी पे भी बात कर रहा था, एंड वहाँ पे होस्ट ने ये सवाल पूछा था कि देयर वाज स्पिन ऑन द ट्रैक, बट द गुड थिंग वॉज दैट द स्पिन हैड बिकम वेरी प्रिडिक्टेबल ऑन दैट ट्रैक। आपको पता था कि बॉल पड़ के कहाँ स्पिन होके आने वाली है, सो वेरिएबल बाउंस या वेरिएबल स्पिन जो है वो उस विकेट में नहीं रहा था, जिसको पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है उन्होंने अच्छा रीड कर लिया था, स्पेशली आबिद अली पाकिस्तान ने स्टार्ट भी जो है वो अपना पॉजिटिवली लिया था. आई थिंक वो जहन में लेकर चले थे कि पहले सेशन में ये मैच खत्म कर देना है, इसको ड्रैग नहीं करना. सो पॉजिटिव गेम बाय देम. अनफॉर्चुनेटली आबिद अली जो है वो अपनी दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी नहीं बना पाए. एक बहुत ही रेयर इंसिडेंट होता है दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बनाना, खास तौर से पाकिस्तान के लिए, विच हैज नेवर बीन नोन फॉर इट्स बैटिंग पावर्स. आई थिंक 440 टेस्ट जो पाकिस्तान ने अब तक खेले हैं उसमें सिर्फ 9 दफा ये वाकया हुआ है कि दोनों इनिंग्स में जो है वो सेंचुरी बनाई गई हो. एंड आबिद अली केम वेरी क्लोज यस्टरडे, नर्वस 90s का शिकार हुए, 91 रन पे वो आउट हुए. उससे पहले अब्दुल्ला शफीक 52 रन पे आउट हुए. और ये बात माननी पड़ेगी कि अब्दुल्ला शफीक ने दोनों इनिंग्स में जो 50 स्कोर की है, 51 या 52 आई थिंक, 52 इन द फर्स्ट इनिंग एंड 73 इन द सेकंड इनिंग, ही हैज इंप्रेस्ड अ लॉट ऑफ पीपल. उन्होंने जो मेच्योरिटी शो की है, जो कंपोजर शो किया है, और चाहे वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने की बात हो, याद रहे जी अब्दुल्ला शफीक ने अपनी अटेंशन जो लोगों को हासिल की थी, अगर आपको याद हो तो उन्होंने वो T20 सेंचुरी जो स्कोर की थी डोमेस्टिक T20 मैच, और यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि ही कैन प्ले डिफेंसिवली एज वेल एंड ही वॉज वेरी सॉलिड ऑफ द बैक फुट एज वेल. सो अपेरेंटली टच वुड गुड एडिशन टू पाकिस्तान टीम. कम अज कम इमरान भट्ट से तो डेफिनेटली ये एक लेवल अप है. और लेट्स विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. सो पाकिस्तान ने इस टोटल को चेस किया बासानी 2 विकेटों के नुकसान पर. अजहर अली नॉट आउट रहे 24 रन बनाकर, बाबर आजम नॉट आउट रहे 13 रन पर. सो ये रहा सिलसिला. और यह पाकिस्तान इज वन अप इन दिस सीरीज. और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर इस वक्त फिलहाल पहुंच गया है. वेस्ट इंडीज, यार पाकिस्तान जो अगस्त में एक मैच हम वेस्ट इंडीज से हारे थे ना, ये मैच हमें महंगा पड़ जाएगा यार, बिकॉज वी शुडंट हैव लॉस्ट दैट गेम. आई मीन सीरियसली, आपको अंदाजा होगा कि यू गाइस वुड हैव रिमेंबर्ड दैट टेस्ट मैच. और बिकॉज पाकिस्तान को इस बार याद रहे कि इस बार अच्छा ड्रॉ मिला है पाकिस्तान को, जो इस टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान को अच्छा ड्रॉ मिला है. ड्रॉ से मुराद ये पाकिस्तान को जो मैचेस, यानी मुश्किल टीमों के खिलाफ हम अपने होम पे खेल रहे होंगे, और निस्बतन जो कम मुश्किल टीमें हैं उनके खिलाफ वी विल बी प्लेइंग अवे. सो अब बांग्लादेश के खिलाफ वी शुड विन दिस टेस्ट मैच, बिकॉज अच्छा अगला मैच जो है ना वो ढाका में होने वाला है. तो चलें अभी पहले हम ये जरा टेस्ट रैंकिंग के हवाले से जो है ना वो बात कर लेते हैं. और इसमें श्रीलंका फिलहाल टॉप पोजीशन पे. इट्स वेरी अर्ली डेज, स्टिल इट्स वेरी अर्ली डेज. आई मीन श्रीलंका इज ऑन द टॉप, बट वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ है गोल में होने वाले पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट मैच में, जहां पे 204 रन पे श्रीलंका अपनी पहली इनिंग में आउट हो गया था. और वेस्ट इंडीज ने कल 69 रन बना लिए थे, उनकी एक विकेट गिरी थी, लेकिन दे स्टिल ट्रेलिंग बाय 135 रन. सो एनीथिंग कैन हैपन देयर, बट हाउएवर वेस्ट इंडीज विनिंग और एट लीस्ट ड्रॉइंग दिस टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए आगे के लिए आसानियां पैदा कर सकता है फॉर इफ दे वॉन्ट टू रीच द टॉप. हाउएवर नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टेस्ट मैच. नेक्स्ट टेस्ट मैच में एक मेजर तब्दीली बांग्लादेश की टीम में आपको देखने को मिलेगी, और वो ये दैट उनके टॉप ऑलराउंडर शकीबुल हसन इज बैक फिट. ही इज अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड. कल बांग्लादेश ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया जिसमें शकीबुल हसन जो है वो शामिल है. सो विल मोस्ट प्रोबेबली बी प्लेइंग इन दैट मैच. अच्छा ढाका में अगला मैच होना है, और जो शेर बांग्ला स्टेडियम का मसला है ना वो ये है कि यहाँ बॉल क्रिप काफ़ी ज़्यादा करेगा. और यहाँ के जो टेस्ट मैचेस होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा, पहले बैटिंग करते हुए तो आप रन जो कर लें, बाद में यहाँ पे बॉल फिर करता है ग्रिप और बॉल करता है काफ़ी स्पिन. और हमने तैजुल के खिलाफ देखा, ये तैजुल इस्लाम के खिलाफ लेफ्ट आर्म जहाँ पे भी खब्बा बॉलर आता है ना यार, आपको पता है पाकिस्तानी तो स्ट्रगल करते हैं उसके खिलाफ. सो अगले मैच में पाकिस्तानियों की जो अपनी टोटल बैटिंग स्किल्स हैं वो अप्लाई करनी पड़ेंगी. इतना आसान ये टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए होने नहीं वाला. मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान एक तब्दीली जो है वो अपनी टीम में कर सकता है, और जाहिद महमूद जो है उनको ऑप्शन दी जा सकती है. सो लेट्स सी क्या होता है. सो वील बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. ऑलराइट, इसके अलावा इंडिया न्यूजीलैंड का मैच तो हो गया था, उसकी हमने बात कर ली थी. नहीं, हम उसकी बात नहीं, वो फिट मैच हो गया यार. वो न्यूजीलैंड ने तो छा गया यार, जिस तरह उन्होंने आखिरी विकेट पर आके इस मैच को डिफेंड किया है, अमेजिंग. ओके, तो ये इंडिया के लिए थोड़ा सा एक इंडिया डजंट नॉर्मली लूज एट होम. आई एम टेलिंग यू दे नॉर्मली डोंट लूज. आई मीन ये पिछले 4 साल में इंडिया ने अपने होम ग्राउंड पे पहला टेस्ट मैच ड्रॉ किया है. इस दौरान इंडिया ने कुछ शायद 10 टेस्ट मैचेस जीते हैं. एक में उनको इंग्लैंड के हाथों शिकस्त हुई थी, वो पहला टेस्ट मैच जो उनकी सीरीज के था, और उसके बाद फिर इंडिया ने शिकस्त फाश दी थी इंग्लैंड को. तो इनके होम ग्राउंड पे न्यूजीलैंड जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, आपको पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने में भी कामयाब हुई थी, तो उन्होंने जो है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त अपनी ये फाइट जो है ना वो पुट अप कर दी है. अच्छा जी, इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें जो है वो अब ये दूसरे टेस्ट मैच ये मुंबई वानखेड़े में होने वाला है. सो इस टेस्ट मैच की तारीख है 3 दिसंबर को जुमे से, परसों से इस टेस्ट मैच का आगाज हो रहा है. जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, बाय द वे सैटरडे यानी 4 दिसंबर से उस टेस्ट मैच का जो है वो आगाज होना है. तो लॉट्स ऑफ क्रिकेट टू वॉच ओवर द वीकेंड, विच इज अ गुड थिंग, इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग. और जल्दी से फुटबॉल के हवाले से हम बात कर लेते हैं. फुटबॉल में इस वक्त जो है ना, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड ओवर लियोनेल मेसी. वैसे यार यार थोड़ी ज्यादती हो गई यार ये लियो मेसी को इस बार. बस वो रेपुटेशन पे मुझे लग रहा है उसको बैलून डॉग जो है ना वो मिल गया है. दुनिया का टॉप फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, दुनिया के टॉप फुटबॉलर का ईयर, गोल्डन बॉल अवार्ड, बैलून डॉग एज द से इन फ्रेंच, वो अवार्ड उनको मिला है. सो अभी जो है ना वो उस पर काफी ज्यादा बात हो रही है कि यार ये जो है ना थोड़ी सी ज्यादती हो गई है. लेकिन मेसी की अगर आप बात करें तो उनकी इस साल जो एक बड़ी अचीवमेंट थी जाहिर है वो ये थी कि कोपा अमेरिका. और मेसी के बारे में मुझे कहा जाता है कि यार अर्जेंटीना के लिए जो है ना वो बड़ी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाया, लेकिन उनके करियर में जो है वो पहली ये बड़ी कामयाबी फॉर अर्जेंटीना के कलर्स में जो थी वो थी. सो ही हैज मैनेज्ड टू विन इट फॉर द रिकॉर्ड 7th time. और बेसिकली अभी आपको पता है कि वो बार्सिलोना से वो नहीं खेलते, ही हैज इज प्लेइंग फॉर पेरिस सैन जर्मैन. और कोई पेरिस सैन जर्मैन के लिए भी ना कोई इतनी जबरदस्त उन्होंने कोई कारकर्दगी का ऐसा जो है ना वो मुजाहरा किया नहीं है. तो बहुत सारे लोग का ये ख्याल था कि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो कि पोलैंड के स्ट्राइकर हैं और बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं जर्मनी में, लोगों का ख्याल था कि यार वो ज्यादा हकदार थे इस बार अवार्ड जीतने के लिए. बहरहाल अब क्या कहा जा सकता है. अब मुझे लग रहा है ये मेसी का आखिरी बैलून डॉग है, इस चक्कर में बस उसको शायद ऐसी हो गया सीन. अब आगे का मुझे इतना कोई लग नहीं रहा सीन. ऑलराइट चलें जी, अभी नहीं चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे, बाकी गाना सुनेंगे. यार अब बहुत बातें हो गई हैं, जब से आया हूँ बोले ही जा रहा हूँ मैं, तो अभी गाना सुनते हैं अच्छा सा कोई, और अभी वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं अपना. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. कमाल कर दिया यार आतिफ, जबरदस्त. दैट वाज कोक स्टूडियोज बेस्ट सॉन्ग एवर. देयर वाज जलपरी आतिफ असलम. आई होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग एज मच एज आई डिड. एवरी टाइम जब भी सुनते हैं इस गाने को एंजॉय करते हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों, ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, 8:26 हो चुके हैं. और जल्दी से आप लोग के मैसेजेस भी प्रोग्राम में हम शामिल करते चले. तहरीन कहती है, अदील भाई व्हाट अ सॉन्ग, जबरदस्त, प्लीज विश माय सन गुड लक एज ही हैज हिज फर्स्ट मिड टर्म पेपर एंड ही इज आल्सो ही सो नर्वस. अबे यार ये इम्तिहान शम्तिहान के चक्कर में जो है ना ये होना नर्वस छोड़ दो यार, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिंदगी में यार, ठीक है. सो टेंशन ना लो, आई एम श्योर तुम्हारे पेरेंट्स भी ये बात समझते हैं. नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं यार, कोई टेंशन की बात नहीं है. और जिंदगी में जब तुम आगे निकल जाओगे ना बहुत ज्यादा, तो तुम्हें ना अपने जहन में ये मिड टर्म तुम्हें याद भी नहीं होगा कभी, तुम्हारी किसी मेमोरी का हिस्सा भी नहीं होने वाला ये मिड टर्म, तो उसके लिए टेंशन क्यों लेनी है. इसलिए जिंदगी में बहुत कम चीजों पर टेंशन लिया करो, वो चीजें जो कि आपको 10 साल बाद भी याद रहेंगी ना. ये मिड टर्म याद रहेगा नहीं रहेगा तो बस मूव ऑन यार, ठीक है, टेंशन ना लो, गुजर जाएगा ये. ओके डीजे सुमेर सर, बिल्कुल आपके सर, अभी आपकी जो है ना आपकी और डॉक्टर जीशान की एक ही किस्म का ख्वाहिशात का इजहार है, तो उस पर जो है ना वो जरा हम अभी अभी उसको पूरी कर देते हैं थोड़ी देर में, ठीक हो गया. राना भी कहती हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस इंडीड इज. और इसके अलावा जो है वो बीनिश भी कहती हैं कि जी अच्छा गाना था, दैट इज ग्रेट. एंड देन वी हैव गॉट मिना रफीक, अरे वाह जबरदस्त. मिना हमारी एक्स कॉलीग समा एफएम के जमाने की हैं और कहती हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई, लिसनिंग टू योर शो ऑन द वे टू जॉब, दैट इज ग्रेट. नबीर मिर्जा चुख्ताई जो हैं वो रोड ट्रिप से वापस आए हैं लाहौर से और कहते हैं जी मोटरवे में उनको काफ़ी ज़्यादा थिक फॉग मिली थी. यार वैसे आपकी हिम्मत है कि आप इस थिक फॉग में जो आपने वीडियो शेयर की है आप गाड़ी चला रहे थे. यू आर नॉट बींग फेयर टू योर सेल्फ माई फ्रेंड, नॉट गुड. ऑलराइट नुमान खालिद कहते हैं द पिच अगेंस्ट इंग्लैंड एट चेन्नई कॉस्ट इंडिया द मैच, दे गॉट गुड लेसन एंड प्रिपेयर्ड रैंक टर्नर्स आफ्टरवर्ड. एब्सोल्युटली मुझे ये भी बड़ी हैरत हुई है कि ये कानपुर की विकेट जो है ये उस तरह की विकेट उन्होंने नहीं बनाई जिस तरह की विकेट बनाने में हिंदुस्तानी जो है वो अब शोहरत रखते हैं. और काफ़ी मुझे भी हैरानी हुई क्योंकि विकेट आखिरी दिन भी येस इट वॉज टर्निंग इट वॉज ग्रिपिंग, लेकिन जिस तरह के रैंक टर्नर्स इंडिया बनाता है नागपुर किस्म के मैदान में वो चीज़ नज़र नहीं आई थी. तो बहरहाल ओके जी. साकिब शाहान कहते हैं बेनज़ीर वंस वन फ्रॉम NA1 पिशावर आई थिंक इन 1993. कुछ थी यार पीपल्स पार्टी यूज टू बी बिग इन KP उस वक्त सूबा सरहद जो होता था, अब तो बिल्कुल गायब हो गई है. अर्शद गुमरो कहते हैं अदील भाई इजंट देयर एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन टू द फॉग सिचुएशन, वी ऑलवेज टेक इट फॉर ग्रांटेड व्हिच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ लाइफ, हाउ इज वर्ल्ड टैकलिंग इट. फॉग इज अ नेचुरल फिनोमिनन. फॉग को आप कैसे रोक सकते हैं? लंदन में फॉग बहुत ज्यादा होती है, यूके में बड़ी मशहूर है. कायदे आजम कहते हैं कि जी द ओनली थिंग दैट ही डिसलाइक्ड अबाउट लंदन वाज द फॉग. ये हम कोई आज से 200 साल पहले 150 साल पहले की बात कर रहे हैं यार. सो फॉग यस इन जमानों में कुछ बढ़ गई है. देयर वुड बी सम मीटियोरोलॉजिकल फिनोमिनन. इशू इज द स्मॉग. स्मॉग इज कंट्रोलेबल. और चाइना का एग्जाम्पल जो है वो हमारे सामने है, किस तरह उन्होंने जो है बीजिंग, मुझे याद है 2008 के ओलंपिक गेम्स के लिए उनको अपने शहर की इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ा था महीना पहले अपने फॉग को कंट्रोल, अपने स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए. बट नाउ बीजिंग की फिजा जो है वो काफी साफ, चाइना के बहुत सारे शहरों की फिजा जो काफी जहरीली हो चुकी थी उसको उन्होंने काफी साफ किया है. सो इट कैन बी डन, इट कैन, थिंग्स कैन बी डन अबाउट दैट. आर वी डूइंग इनफ? No. इमादुल हक कहते हैं कंग्रेचुलेशंस ऑन पाकिस्तान विन इन टेस्ट मैच, अ वेरी रेयर गुड बैटिंग परफॉर्मेंस इन द फोर्थ इनिंग्स बाय पाकिस्तान. रीसेंट टाइम्स में वी आर पुटिंग अप सम गुड शोज माय फ्रेंड इन द फोर्थ इनिंग्स व्हिच इज क्वाइट गुड. एंड वी हैव गॉट फ्रिवलस जवाद, ही सेज गुड मॉर्निंग सर, ग्रेट. अताउर रहमान साहब कहते हैं एक्सीलेंट डिस्कशन रिगार्डिंग आईटी विद रेफरेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान, इट्स रियली आई ओपनिंग, दैट्स व्हाई. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर काइंड कमेंट्स. एंड देन डॉक्टर कपिल शर्मा जम्मू में प्रोग्राम सुनते हैं, कहते हैं डियर अदील, इवन टुडे द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी हैड मेड कोडिंग कंपलसरी फ्रॉम क्लास 5th. ह्यूज इंसेंटिव फॉर टेक स्टूडेंट टू वर्क इन AI, क्वांटम इक्वेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एटसेट्रा, मार्चिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अनदर पॉइंट, एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल विल बी मेड मेडिकल कॉलेज इन द कमिंग डेज. That's a big challenge. ये एक थोड़ी सी चैलेंजिंग चीज होगी डॉक्टर्स प्रोड्यूस करना. इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स दैट यू हैव रादर देन द नंबर. पाकिस्तानी एक्सपीरियंस हमें यही बताता है. बट थैंक यू फॉर शेयरिंग द इंडियन एक्सपीरियंस एंड हाउ इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन मैनकाइंड एक्चुअली. सो इन ह्यूमन हिस्ट्री इन फैक्ट. सो जो हम सुबह बात कर रहे थे इन रिलेशन से किस तरह इंडिया ने बैक इन द 50s एंड 60s टेक्नोलॉजी पे फोकस करना शुरू किया, इसकी वजह से जो अमेरिका जब चले जाते हैं लोग तो फिर वहाँ पे वो क्यों ब्लॉसम कर रहे हैं. इवन इंडियाज ओन टेक इंडस्ट्री नाउ इज मूविंग टू फ्रॉम द वेरी बेसिक सर्विस प्रोवाइडिंग लेवल टू अ मोर कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सर्विसेज की तरफ वो जा रहे हैं. फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं, क्या बात है जी. जबरदस्त और खूबसूरत गाना मेहदी हसन खान साहब की आवाज में, आज बहुत दिनों बाद ये गाना मैंने चलाया. एंड दिस इज माय गो टू सॉन्ग व्हेनेवर एनीबॉडी सेज मेहदी हसन साहब का गाना हो जाए तो फिर दिस इज द सॉन्ग दैट आई रश टू. और इसकी एक अच्छी बात यह है कि इट इज एन अनअडल्टरेटेड ट्रैक. इस गाने के ऊपर जो है ना वो इसमें कोई झंकार वंकार जो है ना वो सुनने को नहीं मिल रही है, विच इज अ गुड थिंग. ऑलराइट, बाकी का सीन है, बाकी का सीन है कि डीजे सुमेर लाइक दैट सॉन्ग, थैंक यू सो मच, फ्रॉम द मूवी आईना, इनडीड व्हाट अ सॉन्ग. एंड डॉक्टर शैला लाइक्ड इट टू. And then iske alawa Dr. Farah liked this song too. And then Beerish says lyrics of the songs are zabardast, they are in fact. Aur iske alawa kya scene hai ji, we've got bhai aapko agar tweet karna hai to please hashtag hash zarur istemal kijiye. Messages kuch mere paas nahi pahunch rahe honge ya main unko padh nahi pa raha hunga. Sunrise with Adil, that's the official hashtag of our program. खुर्रम अख्तर कहते हैं उफ क्या बात है, म्यूजिक स्टार्ट होते ही अंदर से आवाज आई है उफ. अच्छा चले, दैट इज ग्रेट. एंड देन हुसैन कहते हैं क्या शानदार सॉन्ग चला दिया सर आपने, थैंक यू. एंड देन वी हैव गॉट डिसम्बर अराइव्स एंड इट्स सिनोनिमस विद अब्रार उल हक, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है. दानिश ये कहते हैं जी दिसंबर के साथ ये गाना काफी अटैच रहा है हमारी मेमोरीज में. ओके ग्रेट, बाकी व्हाट एल्स हैव वी गॉट. चलें जल्दी से बात करते हैं ऑयल की कीमतों, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से. गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि अगले 15 दिन के लिए कीमतें सेम रहेंगी. वैसे ऐसे ही ऐलान हुकूमत ने यकुम नवंबर को भी किया था लेकिन फिर 4 नवंबर को पेट्रोल की कीमतों में काफी इजाफा हो गया था. तो इसलिए अभी अगर गवर्नमेंट ने यह बोल दिया है कि वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं कर रही है तो हम तो उस पर यकीन नहीं करेंगे अगले 5 दिन तक. हमें यकीन आएगा 5 दिसंबर को कि जी पेट्रोल की कीमतें यही होने वाली हैं या पेट्रोल की कीमतों में कुछ तब्दीली होने वाली है. वैसे आलमी मंडियों में पेट्रोल की कीमतों में कल एक बार फिर कमी देखने में आई है और उसके पीछे वजूहात हैं. उसके पीछे वजूहात ये हैं कि अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं यानी इक्विवेलेंट टू स्टेट बैंक के गवर्नर जैसे हमारे यहाँ होते हैं जेरोम पावल, उन्होंने कल कांग्रेस से वो बातें कर रहे थे अमेरिका में वाशिंगटन में और वहाँ पे उन्होंने जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर इनका जो है वो बड़ा फोकस था. और उन्होंने 2-3 बातें कही जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी. एक तो उन्होंने कहा कि जी इन्फ्लेशन इस वक्त 6% अमेरिका में पहुंच गई है जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और इसको नीचे लाना जरूरी है. ताम उन्होंने ये भी कहा कि उनको ऐसा लगता है कि जो हायर कमोडिटीज प्राइसेस हैं जिसके बारे में उनका ये ख्याल था कि अगले साल के पहले ये ख्याल था अगले साल के शुरू तक ये काफी हद तक सप्लाई डिमांड जो है वो चीजें मैनेज हो जाएंगी. उनको ये लग रहा है कि दिस मे कंटिन्यू वेल इनटू द 2020 ईयर एज 2022 एज वेल. एक तो उन्होंने ये पॉइंट बोला. दूसरा उन्होंने ये बोला कि जी अब वक्त आना शुरू हो गया है कि अमेरिका ने जो लोगों के लिए आसानियां पैदा की थी क्वांटिटेटिव ईजिंग वगैरह और वो सारी चीजें थी कि जहां पे उन्होंने बिजनेस को सपोर्ट कर रहे थे लोगों को सपोर्ट कर रहे थे उन चीजों से अब निकलने का वक्त आ गया है और आहिस्ता आहिस्ता अब ये चीजें विड्रॉ हो जानी चाहिए. इसका ज़ाहिर इम्पैक्ट हुआ अमेरिकन मार्केट्स में भी हुआ और लेकिन ऑयल की प्राइस जो है उसमें भी जरा थोड़ी सी जो है वो कमी देखने में आ रही है. बिकॉज लग ये रहा है कि अमेरिका इज गियरिंग अप फॉर एन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज. अमेरिका में भी जो शराय सूद है उसमें इजाफा किया जा सकता है. बिकॉज इस वक्त आपको पता है कि शराय सूद कोविड के बाद से वहां पर लिटरली ना होने के बराबर है. अक्सर लोग ये कहते हैं कि देखो जी माशाल्लाह सूद से फ्री. इस वक्त अमरीकी मईशत नहीं ऐसा नहीं है. दिस इट डजंट वर्क दैट वे. हम भी बचपन में यही समझते थे कि ऐसे ही होता है. जापान में इंटरेस्ट रेट जीरो है तो यानी वहाँ इस्लामी मईशत के उसूलों पे हुकूमत नहीं ऐसा नहीं होता. खैर एनीवे सो अब ये सीन हुआ है कि ऑयल की कीमतों में कल फिर कमी देखने में आई है. ठीक है जी. तो अभी इट इज ट्रेडिंग एट जो ब्रेंट क्रूड है वो 70-75 डॉलर पे है. और अगर WTI की बात करें वेस्टर्न टेक्सस इंस्ट्रूमेंट क्रूड तो नाम से ही लग रहा है कहाँ का होगा. तो 67.74 डॉलर्स टू अ बैरल. सो हुकूमत पाकिस्तान ने जो है ना वो ज़ाहिर है हुकूमत को तो फायदा पहुँचते पहुँचते टाइम लगता है इसका. लेकिन वक्ती तौर से आम तौर से बेनिफिट दे दिया जाता है लेकिन हुकूमत ने इस बार बेनिफिट देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा नहीं जी नहीं दे रहे. और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये तेल की कीमतें गिरती रहेंगी ना और भी गिरती रहेंगी या कम अज़ कम यहीं पर ही रहेंगी तो डू नॉट एक्सपेक्ट एनी मर्सी ओके फ्रॉम द गवर्नमेंट. आई थिंक मर्सी थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड हो जाएगा इस हवाले से लेकिन कोई हुकूमत की तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी या कोई लचक आपको फिलहाल नजर नहीं आएगी. बिकॉज याद रहे एक तो हमें GST अपना फिर से रिकवर करना शुरू करना है. अभी ऑयल की प्राइस का ब्रेकअप आपके सामने आ जाएगा जिसमें शायद आपको ये चीज़ नजर आए कि हुकूमत जो है वो थोड़ा बहुत ऑयल की प्राइस का जो है वो GST उसमें इस वक्त GST 0% पे आया हुआ है. लेकिन पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी लगानी है. IMF को हम वादा करके आए हैं कि हम हर महीने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का इजाफा करेंगे और हमें GST भी रिकवर करना शुरू करना है अपना. लकीली गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन का नंबर है वो बहुत ही जबरदस्त जा रहा है इसलिए टैक्सेशन साइड पे इस वक्त हमारे पे इतना प्रेशर नहीं है. विच इज वाई गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू हैव 0% GST ऑन द ऑयल प्राइसेस. लेकिन फिर भी आपको वो भी अब जमा करना शुरू करना है वन और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी जमा करना शुरू करनी है टू. सो ये तो हो गया. इसकी वजह से अभी फिलहाल हमें ऑयल प्राइसेस कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं चाहे अभी फिलहाल दुनिया में जितनी भी नीचे हो जाए. अभी क्या होने वाला है आज और कल इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज ओपेक प्लस का इजलास जो है वो शुरू होने वाला है और ओपेक प्लस जाहिर है इन चीजों को काफी गौर से देख रहा होगा कि ये जो ऑयल की प्राइसेस 76-77 से अचानक 66 पे आ गई हैं तो अब वो सप्लाई का क्या करने वाले हैं. क्या वो ओपेक प्लस जो है वो सप्लाई को बढ़ाएंगे या सप्लाई को ऐसे ही रखेंगे तो ये नाउ दैट रिमेन्स टू बी सीन. दैट इज अ बिग क्वेश्चन नाउ जो के आने वाले दिनों में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की कीमत या की डायरेक्शन को डिटरमिन करेगा. जाहिर है इसमें एक बहुत बड़ा डिटरमिनेंट जो होने वाला है वो ये भी होने वाला है कि ओमिक्रोन साहब जो है या ओमिक्रोन वेरियंट जो है ये इस पे वैक्सीन कितना काम करती है. कल मॉडर्ना के CEO का ये बोलना है कि जी इस पे कोई खास वैक्सीन का असर जो है वो नहीं होता. हमें लग रहा है कि शायद वो ये वैक्सीन से कुछ हद तक बच जाए उस पे कुछ डिप्रेशन हुआ. लेकिन फिर ये जो खबरें आ रही हैं साउथ अफ्रीका से और दुनिया के और मुल्कों में जहाँ पे ये ओमिक्रोन वाले लोग सफ़र कर रहे हैं वो देख के अंदाज़ा ये हो रहा है कि येस दिस मे बी हाईली कंटेजियस बट दी इसकी जो सिम्टम्स हैं यानी ये बीमारी इतना ये वायरस जो है ये इतना ज़्यादा लोगों को बीमार नहीं कर रहा. हाउ डेडली दैट्स गोइंग टू बी आइंदा वाले आने वाले दिनों में पता चलेगा. लेकिन लेकिन जो मुझे लगा है कि दिस वेरियंट कुड एक्चुअली बी अ सॉर्ट ऑफ मैं ब्लेसिंग का वर्ड तो यूज नहीं करूंगा लेकिन दिस कुड रियली टर्न थिंग्स अराउंड परहैप्स. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ले चलते हैं आपको भी ब्रेक की जाने मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright guys, last link of the show and good morning in this program. अभी tune in किया है जाते जाते जरा बात करते चले. आसिफ अली सिद्दीकी साहब कहते हैं अभी अभी उन्होंने अपडेट एक खबर आई है रॉयटर्स की जानिब से एंड इट सेज दैट ओपेक पोस्टपोन्स टेक्निकल मीटिंग टू इवेल्युएट ओमिक्रॉन इंपैक्ट. ऑलराइट यानी ओपेक ने अपना इजलास जिसकी मैं बात कर रहा था ओपेक प्लस जिसे कहते हैं उसकी टेक्निकल मीटिंग जो है जो होनी थी वो बढ़ गई है. लेकिन अगर आप हेडलाइन के अंदर जाके देखेंगे तो फिर आपको अंदाजा ही होगा कि ओपेक प्लस का इजलास जो होना था वो थर्सडे को होना है. वो टेक्निकल मीटिंग है जिसका उन्होंने आगे बढ़ा दिया एक दिन, मेरा ख्याल से दे वांट टू डिस्कस इट फर्दर. अदरवाइज इट इज हैपनिंग एक्चुअली, इट विल हैपन. सो ओके सर, पता चल जाएगा हमको इस वीकेंड तक के ओपेक के तेवर या ओपेक प्लस के तेवर जो है वो आखिर इस चीज के हवाले से हैं क्या. ऑलराइट, बीबीसी का मैंने अभी फ्रंट पेज में मैं साइन इन, अभी मैंने लॉग इन किया है और यहाँ पे दो खबरें इस वक्त मुझे नजर आ रही हैं. एक तरफ आया है इंडियन सेलिब्रेट न्यू ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल, और उसके जरा सा उल्टे हाथ पे खबर आई हुई है रिसर्जेंस ऑफ पाकिस्तानी इस्लामिस्ट ग्रुप सोज फियर. द रिलीज ऑफ द टीएलपी लीडर एंड सपोर्टर्स कुड हैव फार रीचिंग इंप्लिकेशंस इन पाकिस्तान एंड बियॉन्ड. नाउ आई डोंट बिलीव इन पाकी बैशिंग एवरीवेयर, कि हर जगह जाके हम पाकिस्तान को जलील करते रहे, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिज्म है इंडिया में उस लेवल का भी एक्सट्रीमिज्म है ना, जिस तरह इंडिया में माइनॉरिटीज के लिए जमीन तंग की जा रही है वो भी अपनी जगह है. बट दैट एक्चुअली टेल्स यू द सॉर्ट ऑफ what BBC is writing is not wrong. I mean, मुसलसल मैं यही बोल रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ मैं, कि TLP के साथ जिस तरह हमारी हुकूमत ने अपने हथियार डाले हैं और जिस तरह उन्होंने they have simply capitulated to this very I would say काफ़ी inspired group है from the concept of militancy and all. वहाँ पर सरकार ने जिस तरह उनके सामने give up किया और जिस तरह मुख्तलिफ पाकिस्तान की top political parties के लोग उनसे मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है दैट एवरीबॉडी वांट्स टू सीक अप्रूवल फ्रॉम टीएलपी, दैट एक्चुअली टेल्स यू ऑफ द सिचुएशन एट हैंड इन पाकिस्तान राइट नाउ. ऑलराइट जी, देन वी हैव गॉट राइट नाउ एट शारा फैसल. छोड़ दो तला सिद्दीकी, छोड़ दो, पाकिस्तान में रहना है, कराची में रहना है तो ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको. ऑलराइट, इसके अलावा जो है वो हमें बात करनी थी इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन, यस, इन्फ्लेशन 21 महीने का सबसे बड़ा नंबर आया है, 11.5% इन्फ्लेशन. और जाहिर है ऐसे टाइम पे जहाँ पे पेट्रोल की कीमतों में दो दफ़ा महीनों में इजाफा हुआ, सो उसमें इन्फ्लेशन का नंबर जाहिर है डबल डिजिट्स में पहुँच चुका है. एंड जाहिर है इससे जो एक और बात समझ में आ रही है वो यही आ रही है कि कहीं स्टेट बैंक दोबारा से मीटिंग बुला के अपने इंटरेस्ट रेट्स तो नहीं बढ़ा देगा, बिकॉज दिस इज द हाई नंबर ऑफ इन्फ्लेशन. अगेन वही बात है कि इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए. We are going through a very high inflation time right now. Aur zahir the commodities prices are leading to that. Plus there is a demand based thing as well, jisko control karne ki bharat state bank jo hai wo koshish kar raha hai. So let's see what happens there. But that's a very sad number. All right, okay. Bilal Kamran is joining a new bank today, so good luck to him and a big step in his career and definitely a big step up in his career. Main zahir hai unke bank ka naam nahi le raha, lekin good luck to him. Allah Taala inko aage bhi kamyabi de. He's a very smart boy aur zabardast. Iske alawa, theek hai, chalein ji, waqt aa gaya aap logo se ijazat di jaye. Thank you so much guys for all your participation and मजा आया जी शो करने में आज एक दिन के ब्रेक के बाद. काफी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की और अच्छा रहा, आप लोगों से सुना भी. सो विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड टाइम टुडे. इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात एक बार फिर से. सो टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.